हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 38 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
आराध्यो भगवान ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर दरुणबिंबफल धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात हरविंद नेत्रा कृष्णात परम किमपि तत्व अहम् न जाने। खरारविंदे न पधारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृतुमेत देव गोविंद धामो धरमाधवेति बर्हापीडं नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारा बिभ्राद्वासः स्वपद कमलं प्राविशत् कीर्तकीर्ति रन्ध्रार्वेणुर् अधरसुधया पूर्णयोगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तकीर्ति अहो बकियं स्तनकालकूटं जिंहासयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्मादयालुं शरणं व्रजेम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलखिशो जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन छोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 5 जिसका शीर्षक है
मैत्रेय से विदुर की वार्ता। तो मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने जो पहला प्रश्न किया वो तो यह पूछा कि संसार के लोग ना चाहते हुए भी दुख ही प्राप्त करते हैं, सुख के लिए प्रयास करते हैं और दुख ही प्राप्त करते हैं। और दूसरा प्रश्न जो उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में किया उसी के विषय में अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल ये पढ़ा कि सृष्टि का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो उसमें सबसे पहले बताया मिथ्या अहंकार जब सत्वगुण से मिलता है तो उससे मन का निर्माण होता है, और साथ एक और भी उत्पत्ति होती है और वो है देवता। और जब अहंकार रजोगुण से मिलता है तो ज्ञान और कर्म इंद्रियों का निर्माण होता है, और इसके साथ साथ दार्शनिक चिंतन जो ज्ञानी जन है और जो सकाम कर्मियों का भी निर्माण होता है। और जब अहंकार से तमोगुण मिलता है तो आकाश बनता है, यानी आकाश परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जो लोग भगवान के स्वरूप को नहीं मानते वो परमात्मा को मानते हैं। और फिर बताया कि कैसे इंद्रियों के विषय और महाभूत उत्पन्न हुए, पानी के कैसे उत्पन्न हुआ और स्पर्श कैसे उत्पन्न हुआ, सुगंध, पृथ्वी, बिजली किस प्रकार से उत्पन्न हुए, वो सब मैत्रेय मुनि ने बताया। और सबसे मेन बात क्या बताएं कि भगवान जब इन सब वस्तुओं पर अपना दृष्टिपात करते हैं तब ही दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खुद ब खुद उत्पन्न हुआ हो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की दृष्टिपात के उपरांत ही उत्पन्न हुई। तो इस तरह अगर भगवान का संयोग नहीं होगा तो कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए हमें सदैव भगवान का ही धन्यवाद करना चाहिए कि हमारा शरीर और इस शरीर को चलाने के लिए प्रत्येक वस्तु और इस शरीर में भगवत भक्ति करने के लिए जो 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 वस्तुओं की आवश्यकता है वो सब भगवान ने हमें प्रदान की, ताकि हम इस मनुष्य देह के द्वारा पुनः भगवत धाम की ओर जा सकें। उसके उपरांत आज हम श्लोक नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। मैत्रेय मुनि कहते हैं, एते देवा कला विष्णु कालमायांशलिंगिनः नानात्वात् स्वक्रियानीश प्रोचु प्राञ्जलयो विभुम् एते देवा कला विष्णु कालमायांशलिंगिनः नानात्वात् स्वक्रियानीश प्रोचु प्राञ्जलयो विभुम्। शब्दार्थ, एति देवा कला विष्णु, एति मना इन सारे भौतिक तत्वों में, देवा मना नियंत्रण, देवा कला मना अंश, विष्णु यानी भगवान के। अब ये जितने भी भौतिक तत्व हैं उनके अंदर भगवान विष्णु ने एक एक देवता को नियंत्रक के रूप में रखा, वो सब देवता भी भगवान के अंश हैं। तो काल माया शलिंगीन, काल मतलब काल, माया मना बहिरंग शक्ति, अंश मतलब अंश, लिंगी ना मतलब इस तरह देहदारी, और नानात्वात् मतलब विभिन्नता के कारण, स्वक्रिया निजी क्रिया, अनिशा ना कर पाने के कारण, प्रोचु कहा, प्रांजलया मनोहारी विभोम यानी भगवान को। अनुवाद देखिए, ऊपर युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देवता भगवान विष्णु के शक्ति आविष्ट अंश हैं। वे बहिरंग शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं। चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्व के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। अब यहाँ से एक दूसरी बात बता रहे हैं मैत्रेय मुनि कि सब वस्तुओं को जब भगवान ने बना दिया
उसके बाद हर एक जो भी है भौतिक तत्व, जैसे पृथ्वी, अब पृथ्वी की देवी कौन है? पृथ्वी माता। जल के देवता वरुण देव, इस तरह से प्रत्येक वायु के देवता पवन देव, तो प्रत्येक भौतिक तत्व के नियंत्रक देवता भी हैं। अब उन वो सब देवता कौन है? भगवान के ही अंश हैं, और भगवान के अंश होने के नाते वो उनके अंदर शक्ति तो है, वे बहिरंग, लेकिन वो बहिरंग शक्ति के अंतर्गत नित्य काल के द्वारा देह धारण करते हैं। अब उनको ये भौतिक तत्वों के स्वरूप में देह धारण, देह प्राप्त हुई, और फिर भगवान ने उनको ब्रह्मांडीय दायित्व के विभिन्न कार्य सौंपे कि भाई आपको जल का डिपार्टमेंट सौंपा जाता है, आपको ना वर्षा का, आपको हवा का। लेकिन इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं वे। वे कहते नानात्वात् स्वक्रियानीश, जब उनको अलग अलग क्रिया अनीश सौंपी गई, अनीश मतलब वो स्वयं उसके लिए संपन्न करने के लिए असमर्थ थे, फिर उन्होंने क्या किया? प्रोचु प्रांजलयो वेभुम, फिर भगवान की बहुत ही सुंदर मनोहारिणी स्तुतियां की। और उसके बाद अब हम आगे देवताओं ने भगवान से क्या स्तुति की वही पढ़ेंगे, मतलब श्लोक नंबर 39 से लेकर श्लोक नंबर 50 तक वो हम भगवान, देवताओं ने जो भगवान की स्तुति की उसी के विषय में पढ़ेंगे। अब श्लोक प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य समझाएंगे, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मांडीय कार्य व्यापार की व्यवस्था के लिए उच्चतर लोकों में निवास करने वाले विविध नियंत्रक देवताओं की अवधारणा काल्पनिक नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञ व्यक्ति प्रस्तावित करते हैं। ये देवतागण भगवान विष्णु के विस्तारित अंश हैं, और ये काल बहिरंगा शक्ति तथा परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते, कुछ लोग बोलते नहीं नहीं कोई देवता वेवता नहीं होते, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जल के अंदर भी देवता है, हवा के अंदर भी देवता है, मिट्टी धरती के अंदर भी देवता है, आकाश के अंदर भी देवता है, ये सिर्फ काल्पनिक नहीं है, ये शास्त्र ने कहा है। एते देवा कला विष्णु काल मायांश लिंगिना, ये वास्तव में सारे देवता हैं, हम किसी भी समय देवताओं की नज़र से दूर नहीं है। अभी हम एक रूम में बैठे होते हैं ना, वहाँ पर भी वायु है ना, तो वो देवता हमें देख रहे हैं, जो ये दसों दिशाएं हैं ना, उनका देवता हमें देख रहा है, पृथ्वी का देवता, आकाश का देवता हमें देख रहा है, उन्हीं के नियंत्रण में हम हैं। कभी भी मत सोचो कि हम कोई अपराध जो है वो छुप के कर सकते हैं, वो सब नोट हो रहा है। हमारे जो शरीर है वो पंचभूत से बना हुआ है, और शरीर के प्रत्येक अंग पर एक देवता का निवास है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं, जैसा कि अल्पज्ञ व्यक्ति प्रस्तावित करते, ऐसा नहीं है, ये देवतागण भगवान विष्णु के विस्तारित अंश हैं, और ये काल बहिरंगा शक्ति तथा परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते हैं। फिर मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि भी भगवान के अंश और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु वे भौतिक मामलों में नियंत्रित देवता नहीं हैं, प्रत्युत वे ऐसे देवताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं देवता जो हैं वो नियंत्रक हैं, यानी वो कंट्रोलर हैं, और जो हम हैं जैसे पशु हैं पक्षी हैं, वो कंट्रोलर नहीं, वो कंट्रोल्ड हैं, उन देवताओं के द्वारा कंट्रोल्ड। तो ऐसा नियंत्रण निरर्थक नहीं होता, यह उतना ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों में नियंत्रक विभाग होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते कंट्रोलर होना जरूरी है, जिस तरह से राज्य होता है, कोई गवर्नमेंट होती है, उसमें भी कंट्रोल होते हैं ना कि भाई कोई ट्रैफिक पुलिस होता है, कोई कोई किसी को क्या डिपार्टमेंट, किसी को क्या डिपार्टमेंट सौंपा जाता है ना, तो वो ज़रूरी है, वरना तो सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। इसी तरह से हमारे लिए भी कंट्रोलर देवता आवश्यक है, नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, कभी भी हमको देवताओं का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए, वे सभी भगवान के महान भक्त होते हैं, जिन्हें
विश्व के मामलों के कुछ कार्य संपन्न करने का भार सौंपा गया है। कोई व्यक्ति यमराज पर क्रुद्ध हो सकता है कि वह पापी आत्माओं को दंड देने का अप्रशस्त कार्य करता है, किंतु यमराज भगवान के अधिकृत भक्तों में से हैं। इसी तरह अन्य सारे देवता भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता जो कि भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि हमें किसी भी देवता का, जैसे यमराज जी का, कभी भी उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान के आदेशों के अनुसार जीवों को उनके कर्मों का दंड मिलता है। तो भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता है जो कि भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सारे देवता जो हैं भगवान के भक्तों के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, किंतु भक्त उनके उन उत्तरदायित्वपूर्ण पदों के कारण उनका सम्मान करता है। ये भक्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनका सम्मान करें, क्योंकि उनको इतना बड़ा उत्तरदायित्व दिया है भगवान ने, जिन पर भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। साथ ही भगवत भक्त उन्हें मूर्खतावश परमेश्वर नहीं मान बैठता, केवल मूर्ख लोग ही देवताओं को विष्णु के तुल्य मानते हैं। वस्तुतः वे सभी विष्णु के सेवकों के रूप में नियुक्त होते हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर समझने वाली बात है कि भक्त उनका आदर करता है, परंतु उन्हें भगवान नहीं समझता, क्योंकि उनको पता है ये तो भगवान विष्णु के ही अंश हैं। जो कोई भी भगवान तथा देवताओं को समान स्तर पर रखता है वह पाषंडी या नास्तिक कहलाता है। देवताओं की पूजा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो न्यूनाधिक ज्ञान योग तथा कर्म की विधियों के पालक हैं, अर्थात निर्विशेषवादी ध्यानी तथा सकाम कर्मी हैं। किंतु भक्तगण तो एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती। जिनकी कामना सारे भौतिकतावादियों द्वारा, यहाँ तक कि मोक्ष कामियों, योगियों तथा सकाम कर्मियों द्वारा भी की जाती है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्त जो है वो देवताओं का आदर करता है, उनका सम्मान करता है, क्योंकि वो भगवान के ही उत्तराधिकारी के रूप में जीवों का कल्याण करने के लिए, उनको विभिन्न भौतिक वस्तुओं प्रदान करने के लिए हैं। लेकिन भक्त कभी भी देवताओं को भगवान समझकर उनकी पूजा नहीं करता। पूजा तो केवल वो भगवान की ही करता है। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो न्यूनानिक ज्ञान योग तथा कर्म की विधियों के पालक हैं, अर्थात निर्विशेषवादियों, ज्ञानियों तथा सकाम कर्मी हैं, किंतु भक्तगण एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती है। भक्त भगवान की पूजा भी किसी चीज के लिए नहीं करते जिसकी कामना सारे भौतिकतावादियों द्वारा, यहाँ तक कि मोक्षकामी योगियों तथा सकाम कर्मियों के द्वारा भी की जाती है। ये सब भौतिक लाभ है। भक्तगण परमेश्वर की पूजा भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु जिनके पास मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य ईश प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता, उनके द्वारा भगवान नहीं पूजे जाते। तो भगवान को सिर्फ प्रेमा भक्ति के लिए, शुद्ध भक्ति के लिए पूजा जाता है। शुद्ध भक्तों का एक ही इच्छा होती है कि भगवान मैं कैसे आपकी प्रेमा भक्ति प्राप्त करूं, आपके चरणों में प्रेम प्राप्त करूं। ईश्वर के साथ प्रेम पूर्ण संबंध से विमुख व्यक्ति कुछ हद तक अपने ही कर्मों द्वारा तिरस्कृत होता है। तो कितना भी कार्य करेगा उसका तिरस्कार अपने ही कर्मों के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम जीव के अंदर ये चेतना नहीं आती कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा करनी है, तब तक उसे कभी आनंद नहीं होता। भगवान प्रत्येक जीव के प्रति उसी तरह समभाव रखते हैं जिस तरह बहती हुई गंगा जल हर व्यक्ति की शुद्धि के निमित्त है। तो भी गंगा के तट के वृक्ष का महत्व भिन्न होता है। गंगा के तट पर आम्र वृक्ष जल पीता है और नींबू वृक्ष भी उसी जल को पीता है।
किंतु दोनों वृक्षों के फल भिन्न भिन्न होते हैं। एक में स्वर्गिक मिठास होती है और दूसरे में नारकीय तिक्तता। निम्ब की तिरस्कृत तिक्तता उसके विगत कर्म के कारण है, जिस तरह की आम की मधुरता भी उसके अपने कर्म के कारण। श्रीमद् भगवत गीता 16.19 में भगवान ने कहा, तामहं द्वेषतः क्रूणान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्रं शुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं भवसागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। यमराज जैसे देवता तथा अन्य नियंत्रक उन अवांछित बद्ध आत्माओं के लिए, जो ईश्वर के साम्राज्य की शांति भंग करने में सदैव लगे रहते हैं, चूँकि ये सारे देवता भगवान के विश्वस्त भक्त सेवक हैं, अतएव उनका कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान तो सबके साथ समभाव हैं, वो तो सबके साथ उसी तरह से सम हैं जिस तरह से माता पिता होते हैं, जिस तरह से वर्षा का जल या जिस तरह से बहती हुई गंगा नदी। लेकिन भगवान जीव को वही मिलता है जो कि उसने विगत कर्मों के संचित किए होंगे ना, वही फल प्राप्त होता है। तो जीव को आज अगर दुख मिल रहा है, कोई कष्ट मिल रहा है, भले देवताओं के द्वारा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि भगवान ही देवताओं के द्वारा उनको उनके कर्मों का फल देता है। जैसे यहाँ पर भगवान ने कहा, खुद स्वयं कहा, तमाहम द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमा। जो लोग ईर्ष्यालु हैं, जो दुर्जन हैं, नराधम हैं, उन्हें भवसागर में भगवान बार बार भेज देते हैं। तो देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। भगवान से भयभीत नहीं होना चाहिए कि भगवान हमें दंड देते हैं। यदि भयभीत होना है, यदि सावधान होना है, तो अपने कर्मों से होना चाहिए। देवता भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, देवाः उचुः नमामते देवपदारविन्दम् प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् यन्मूलकेता यतयोञ्जसोरु संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ते नमामते देवपदारविन्दम् प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् यन्मूलकेता यतयोञ्जसोरु संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति। शब्दार्थ, देवाः उचुः अर्थात देवताओं ने कहा, न माम अर्थात हम सादर नमस्कार करते हैं, नमा मतलब नमस्कार करते हैं, ते आपको देव हे प्रभु, पदारविंदम आपके शरण कमलों में, प्रपन्न शरणागति, ताप अर्थात कष्ट, उपशम अर्थात शमन करता है, आताप पत्रम अर्थात छाता, यतमूलकेता अर्थात चरण कमलों की शरण, यन्मूलकेता यतयोंजसो, अंजसो का मतलब है अंजसो का मतलब पूर्णतया, यन्मूलकेता का मतलब होता है चरण कमलों की शरण, यतयः अर्थात महर्षिगण, अंजसा मतलब पूर्णतया, उरु अर्थात महान, संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति, संसार दुखम अर्थात संसार के दुख, बहि अर्थात बाहर, उत्क्षिपन्ति अर्थात बलपूर्वक फेंक देते हैं। देवता भगवान की अत्यंत ही सुंदर स्तुति करते हैं, वे कहते हैं, नामामते देव पदारविंदा। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हम आपके चरण कमलों की शरणागति के लिए आपके चरण कमल शरणागति के लिए छाते के समान, प्रपन्न तापोप शमात पत्रम, यानी कि जो आपके चरण कमलों में आता है वो उनको छाते की तरह सुरक्षा प्रदान करते हैं। यन्मूलकेता यतयोंजसोरु, अर्थात जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं, सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं, यानी कि जितने भी मुनि हैं, जितने भी भक्त हैं, वो निर्भय रहते हैं, वो हमेशा आनंदित रहते हैं, क्योंकि संसार के समस्त कष्टों से जिस तरह छाता वर्षा से हमारी सुरक्षा करता है, उसी तरह जब भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते ना, तो संसार के सारे दुख, संसार दुख बहिक्षेपंती बहिरुत्क्षेपंती, के संसार के सारे दुख जो हैं वो बाहर हो जाते हैं, बलपूर्वक उस छाते के अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि वो उनको बाहर फेंक देता है। और इसलिए जितने भी मुनिगण हैं वो इस मजबूत भगवान के चरण रूपी छाते की शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए देवतागण कहते हैं नमामते देव पदारविंदम, इसलिए हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने के प्रयास में लगे रहते हैं, किंतु इनमें से जो लोग भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं वे बिना कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह उतार फेंक सकते हैं। अन्य लोग जो विविध प्रकार के दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं ऐसा नहीं कर सकते। अभी संसार के दुखों को, कष्टों को दूर करने की और कोई विधि नहीं है शास्त्रों में, सिर्फ एक ही विधि है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहो उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी पर सुखी हरि का दास। सुखी होने की अन्य चेष्टाएं तो सब करते हैं, पर शीला प्रभुपाद जी कहते हैं अन्य लोग जो विविध प्रकार के कार्य करने में लगे रहते हैं सारे, वो ना सुखी नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं वे बिना कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकते हैं। अन्य लोग जो विविध प्रकार के दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। वे भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना मुक्त होने के लिए कृत्रिम वृद्धि का चिंतन कर सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि भाई हम खुशी प्राप्त करने के लिए, कष्टों से दूर करने होने के लिए किसी दूसरे लोक में चले जाएं, दूसरे कंट्री में चले जाएं, वो विविध प्रकार की कृत्रिम विधियों को अपना सकते, किंतु ऐसा संभव नहीं है। ऐसी मिथ्या मुक्ति से मनुष्य पुण्य इस भौतिक जगत में आ गिरता है, चाहे वह कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न किया हो। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं तपस्या करने से सुखी नहीं होते हैं, सुखी होने के लिए एकमात्र भगवान के चरणों का सहारा लेना पड़ेगा, यह उन देवताओं का मत है। ये शिला प्रभुपाद जी बोलते मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वो सारे देवी देवता कहते हैं, प्रपन्नतापोपशमात पत्रम, ये देवता जन कहते हैं जो ना केवल वैदिक ज्ञान में पटु हैं अपितु भूत वर्तमान तथा भविष्य के भी दृष्टा हैं। देवताओं के मत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देवता ही विश्व व्यवस्था संबंधी कार्य व्यापार का पदभार संभालने के लिए प्राधिकृत हैं होते हैं। वे भगवान द्वारा उनके विश्वसनीय सेवकों के रूप में नियुक्त हैं। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं हम लोग संसार में सुखी होने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए अलग अलग लोगों से सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं कि आप बताइए कष्ट कैसे होंगे, दूर होंगे, कैसे हम सुखी हो जाएं, कैसे हम हमारे कष्टों को समाप्त करें। कोई किसी ज्योतिषी के पास जाता है, तो कोई किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो कोई किसी वैज्ञानिक साइंटिस्ट के पास जाता है। लेकिन इन सबको बनाने वाले जो देवता हैं, इन सबके नियंत्रक जो देवता हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं, वो बता रहे हैं कि ये सब आपके कष्टों को दूर करने का कोई उपाय बता ही नहीं सकते। हम बता रहे हैं एकमात्र जीव के कष्टों को दूर करने का उपाय यही है कि वो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ले, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इसी बात को कहते हुए आगे कहते हैं, धातर यदस्मिन् भव ईश जीवा तापत्रयेण विहितान शर्मा आत्मन लभन्ते भगवंस्तवांग्री छायां सविद्या मत आश्रयेमा। धातर यदस्मिन् भव ईश जीवा तापत्रयेण विहतान शर्मा आत्मन लभन्ते भगवंस्तवांग्री छायां सविद्या मत आश्रयेमा। दातः हे पिता, यत क्योंकि अस्मिन मतलब इस भवे यानी संसार में जीवा, ईश का मतलब होता है हे ईश्वर, जीवा मतलब जीव, हे ईश्वर हे पिता, इस संसार के जो जीव हैं, तापत्रयेणा विहत्ता न शर्म, तापत्रयेणा मतलब तीन प्रकार के कष्ट, ताप माना कष्ट, त्रयेणा मतलब तीन प्रकार, कौन से, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कष्ट, अभिहता सदैव ना शर्म, यानी उनको कभी सुख नहीं मिलता। जीव चाहे कितना ही भौतिक सुविधाओं को प्राप्त कर ले, परंतु क्योंकि तीन ताप्तों से हमेशा सताते रहते हैं, तो इसके लिए ना शर्म, उनको कभी आनंद नहीं मिलता। इसलिए आत्मन लभन्ते भगवस्तवांग्री, आत्म यानी आत्मा, लभन्ते यानी प्राप्त करते हैं, भगवान हे भगवान, तव अंग्री छाया, तव मना आपके, अंग्री छाया मतलब आपके चरण कमलों की छाया को। इसलिए वे कहते हैं सविद्याम ज्ञान से पूर्ण अतः आश्रयम, प्राप्त करते हैं आश्रयम यानी शरण। अनुवाद, हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे तीन प्रकार के कष्टों में अभिभूत रहते हैं, अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण हैं, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। यहाँ देवता कह रहे हैं कि जब तक जीव इतना बुद्धिमान नहीं हो जाता है कि वो तीन तरह के दुखों को दूर करने के लिए आपकी शरण की शरण ग्रहण करे, तब तक वो संसार में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए जो ज्ञानी है वो आपकी शरण ग्रहण करते हैं, और वो कहते हैं इसीलिए हम भी उन्हीं चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति में सेवा की विधि ना तो भावनात्मिक है ना लौकिक, यह सत्य का मार्ग है जिससे जीव तीन प्रकार के दैहिक, दैविक तथा भौतिक कष्टों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। तो शीला प्रभुपाद जी बहुत बात सुंदर बता रहे हैं कि कोई ये भावात्मिक है नहीं, भावात्मिक केवल ये भक्ति केवल भावना की बात नहीं है, या केवल संसार में औपचारिकता या केवल रिचुअल्स नहीं है, ये तो एक अलौकिक सत्य है जिसके कारण जीव जो है वो हर प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। भौतिक जगत द्वारा
बद्ध कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो या पक्षी हो, उसे आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक आदि भौतिक यानी जीवों द्वारा प्रदत्त तथा आदि दैविक देवों, देवी देवताओं, उत्पातों के फलस्वरूप यानी आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक कष्ट भोगने पड़ते हैं, चाहे संसार में कोई भी हो, कोई भी हो। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या देवता भी हो, तो भी उन्हें ये कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसका सुख बद्ध जीव के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, किंतु उसकी रक्षा का एक ही उपाय है और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि जीव चाहे कितनी ही कोशिश करेगा, कभी भी वो आनंदित नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही उपाय है जीव की रक्षा का, जीव को सुख प्रदान करने का, कि वो भगवान की शरण को, चरण कमलों की शरण को ग्रहण करे। यह तर्क के उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता, असंदिग्ध रूप से सत्य है। किंतु भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं, अतएव उनके चरण कमलों को स्वीकार करने से उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसकी व्याख्या हम प्रथम स्कंद में 1.2.7 में कर चुके हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते, लोग सोचते हैं भाई ज्ञान प्राप्त करके ही आप भौतिक दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो, तो ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा? भगवान की भक्ति करके, क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं, जनयत या शुवैराग्यम ज्ञानम च चदय। ये वास्तविक ज्ञान तो भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होगा, और जब यही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तभी जीव आनंदित होगा। भगवान वसुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है, वे भक्त के हृदय में से ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने भगवत गीता 10.10 में की है। भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते। अनुभवजन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक संसार के तीन कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। भगवान की भक्ति में समर्पित हुए लगे बिना ज्ञान के लिए प्रयत्न करना मूल्यवान समय का अपव्यय है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान ने कह दिया बेटा ज्ञान तो मैं प्रदान करूँगा, ददामि बुद्धि योगम, लेकिन उसके लिए तुमको क्या करना होगा? सतत युक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम, प्रेम के साथ भगवान का भजन करना होगा। और जैसे ही भगवान का भजन करेंगे तो आगे ज्ञान प्रदान करना, दुखों को दूर करना, कष्टों से मुक्त करना, अपने धाम ले जाना, ये सब भगवान को करना है। बस हमें क्या करना है? प्रेम के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।